दिन भर तारीख 26 फरवरी दिन सोमवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। डूबने से हुई फिल्म स्टार श्रीदेवी की मौत, पोस्टमार्टम एनालिसिस में जानकारी, शव के भारत आने का इंतजार, फैंस गमगीन।
वी आर प्राउड ऑफ हर।
हमको खाना नहीं जा रहा है, खाना इतना खराब लगा बहुत।
सीरिया के पूर्वी गूटा में सरकार समर्थित सेनाओं की कार्रवाई जारी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की अपील, तत्काल लागू हो संघर्ष विराम।
सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस आर ओनली मीनिंगफुल इफ दे आर इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड।
और क्या चीन के करीब जा रहा है भूटान?
अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि भारत से छिपा करके चीन से बातचीत कर रहे हैं और उसका भारत को कोई अंदाज नहीं है, तो उसके ऊपर फिर हमें सतर्क होना पड़ेगा।
होगी आपकी राय भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। दुबई पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत होटल के कमरे में बाथटब में डूबने से हुई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि श्रीदेवी बेहोश होने के बाद डूब गई थीं। दुबई पुलिस ने मामला अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास भेज दिया है, जो ऐसे मामलों में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करता है। संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की वजह दुर्घटनावश डूबना ही बताया गया है। इससे पहले आई रिपोर्टों में कहा गया था कि उनकी मौत हृदय गति रुकने से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त जैद अल हुसैन ने यूरोप के कुछ नेताओं की विदेशी मूल के लोगों के प्रति नफरत फैलाने और नस्लवाद को बढ़ावा देने के लिए आलोचना की है। जैद अल हुसैन ने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान का नाम लेकर उनकी आलोचना की। ऑर्बान ने नस्लों के आपस में मिलन पर टिप्पणी की थी। पोलैंड के प्रधानमंत्री के हालिया बयान के स्पष्ट संदर्भ में उन्होंने उन टिप्पणियों की भी आलोचना की जिनमें यहूदियों को ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए यहूदी नरसंहार के लिए जिम्मेदार बताया गया था। हुसैन ने चेताते हुए कहा है कि बीते 100 सालों के सबसे विनाशकारी युद्ध पैसे या इलाके पर विवाद से नहीं बल्कि मानवाधिकारों के उल्लंघन से शुरू हुए हैं। जैद अल हुसैन ने कहा,
The responsibility for the continuation of so much pain lies with the five.
दुनिया के हर हिस्से में मूल अधिकार पीछे छूट रहे हैं और शर्म भी पीछे छूट रही है। यूरोप के नस्लवादी और दूसरे समुदायों से नफरत करने वाले शर्म के एहसास को भी दूर कर रहे हैं, जैसा कि हंगरी के विक्टर ऑर्बान, जिन्होंने इसी महीने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारा रंग दूसरों के रंग में मिल जाए। क्या वो नहीं जानते कि ऐसे समाजों में जहां नेता नस्लीय, राष्ट्रीय और जातीय पवित्रता की बात करते हैं, वहां अल्पसंख्यकों का क्या होता है? सवाल पूछा ही जाना चाहिए कि क्या हम सब पूरी तरह पागल हो गए हैं। वहीं सीरिया की सरकारी सेना और समर्थक बलों के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पूर्वी घूटा पर हमले लगातार 8वें दिन जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तुरंत संघर्ष विराम की मांग करते हुए कहा है कि नागरिकों की रक्षा होनी ही चाहिए। गुटेरेस ने कहा, मैं सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और मानवाधिकार कानूनों के तहत नागरिकों और नागरिक के लिए जरूरी मूलभूत ढांचे की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी की याद दिलाता हूं, और साथ ही आतंकवाद से लड़ने के प्रयास इन जिम्मेदारियों से ऊपर नहीं है। सोमवार को हवाई हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत के बाद गुटेरेस ने यह बयान दिया है। अनुमान के मुताबिक सप्ताह भर से जारी हमलों में कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि जब सभी पक्ष लागू करने की शर्तों पर राजी हो जाएंगे तब ही संघर्ष विराम शुरू हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संघर्ष विराम के दायरे में नहीं आएंगे। रूस समर्थक सीरियाई सरकार विद्रोहियों को आतंकवादी ही मानती है। दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने तुर्की के राष्ट्रपति से कहा है कि सीरिया में संघर्ष विराम का संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव आफरीन पर भी लागू होगा, जहां तुर्की ने कुर्दों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चला रखा है। वहीं तुर्की का कहना है कि यह संघर्ष विराम लागू नहीं होगा क्योंकि वो कुर्द YPG बलों को आतंकवादी मानता है। उत्तर पश्चिमी सीरिया के इस क्षेत्र में तुर्की ने अपने विशेष पुलिस बल भी तैनात कर रखे हैं। वहीं YPG का कहना है कि वो संघर्ष विराम का पालन करेगा लेकिन हमला होने पर जवाब देगा। सऊदी अरब में महिलाएं पहली बार सेना में नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगी। देश के गृह मंत्रालय ने कई प्रांतों में महिलाओं की सैनिकों के रूप में भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि इस माह के अंत तक रखी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। श्रीदेवी अपने अभिनय के जादू से तमाम दिलों पर राज करने वाली अदाकारा, कल तड़के उनकी मौत की खबर आई। दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैरान हो गए और आज उनकी मौत की वजह की जानकारी दी गई है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली, वो इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। फैसल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या जानकारी दी गई है।
वात्सल्य, अभी तक जो हमारे पास जो जानकारी है, जो दिल्ली दुबई पुलिस और दुबई मीडिया ऑफिस की तरफ से जो ट्वीट से जानकारियाँ दी गई हैं, दुबई पुलिस और दुबई मीडिया ऑफिस दोनों का ये कहना है कि श्रीदेवी बेहोश होकर होटल के कमरे के बाथ टब में गिर पड़ी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। उसके बाद दूसरा एक ट्वीट आया कि अब ये मामला जो है पुलिस ने दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया गया है, जो कि इस मामले में जो है वो रेगुलर लीगल जो कानूनी प्रक्रिया है उसको देखेगी, उसकी जांच करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आगे की कार्रवाई, उनकी बॉडी दुबई से कैसे यहाँ लानी है यात्रा से, या उसकी लेप लगा के इम्बामिंग वगैरह जो होती है वो। इसी सिलसिले में थोड़ी देर पहले मैंने वात्सल्य दुबई में ही स्थित बॉबी नकवी, जो वहाँ की जो बड़ा अखबार है गल्फ न्यूज़, उसके संपादक हैं संयुक्त अरब अमीरात के, उनसे मैंने पूछा कि ये दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन होता क्या है।
पब्लिक प्रोसिक्यूशन और दुबई पुलिस दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दे वर्क इंडिपेंडेंटली एंड ऑब्वियसली द प्रोसिक्यूशन इज द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। इन दिस केस चूंकि दो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, एक फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ है, दूसरा दुबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ है। सो आई थिंक द प्रोसिक्यूशन विल लुक एट बोथ द रिपोर्ट्स। चूंकि एक एक्सीडेंटल डेथ थी, ऐसे केसेस में द प्रोसिक्यूशन विल नाउ लुक एट बोथ द रिपोर्ट्स और उसके बाद फिर जब वो सेटिस्फाइड होंगे सो देन दे विल ऑर्डर द रिलीज ऑफ द बॉडी।
तो इसमें इसमें अमूमन अब जो रिलीज ऑफ द बॉडी का मतलब ये कि एम्बामिंग वगैरह के लिए वो प्रक्रिया शुरू हो गई होगी या वो प्रोसीजर अभी इसके बाद शुरू होगा?
अभी तक बॉडी पुलिस के मॉर्ग में ही है। अब अमूमन तो बॉडी को ट्रांसफर किया जाता है एम्बामिंग के लिए दूसरी जगह पे, लेकिन इस केस में ये भी हो सकता है कि पुलिस मॉर्ग में ही एम्बामिंग हो जाए। मैं मेरा एक ऐसा अंदाज़ा है, मुझे इसमें कंफर्म नॉलेज नहीं है। अमूमन तो बॉडी को दूसरे सेंटर में शिफ्ट किया जाता है, विच इज़ फॉर दी एम्बामिंग, देयर इज एन एम्बामिंग फैसिलिटी।
फैजल साहब, गल्फ न्यूज़ के पत्रकार बॉबी नकवी साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी, मतलब अहम जानकारी दी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि श्रीदेवी का शव कब तक भारत आ पाएगा?
अभी तक कुछ नहीं, क्योंकि जैसा कि बॉबी नकवी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि वहाँ एक स्पेशल विमान उनके शव को लाने की इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया है जो ये जो बता रहे थे पब्लिक प्रोसिक्यूशन, वो दोनों मामले को देखने के बाद अगर गो अहेड देता है तो वहाँ जो भारतीय दूतावास है उन सबके साथ मिलकर फिर यहाँ लाने की प्रक्रिया
की जाएगी। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। हम श्रोताओं को बता दें कि श्रीदेवी की मौत के बाद मुंबई और खासकर बॉलीवुड में शोक की एक लहर देखी जा रही है। उनके घर के करीब रहने वाले और उनके तमाम फैंस जो हैं वो सदमे में हैं। श्रीदेवी के घर के करीब रहने वाले ऐसे ही कुछ फैंस और उनके पड़ोसियों से बात की हमारी सहयोगी सूर्यांशी पांडे ने।
हर कोई मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पे आके खड़े हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि हमें भी ऐसा लग रहा है कि हमारी चांदनी हमारी एरिया से चली गई है। 13 इयर्स ऑफ उनका जो बेस्ट कैरियर थे वो उन्होंने छोड़कर अपने फैमिली के लिए जो सैक्रिफाइस किया, दैट वाज एन एक्सेलेंट एग्जांपल दैट वी आर प्राउड ऑफ हर।
हमको खाना भी कल सुना बात तो खाना नहीं जा रहा है और इतना खराब लगा, बहुत पूरा बदन पसीना पसीना हो रहा है।
हम श्रीदेवी को बहुत याद करते हैं और उनकी डेट का ये सुने तो हमको बहुत बुरा लगा और बहुत मतलब अजीब सा लगा हमको, इसलिए हम उनको देखने आए।
हमारे को श्रीदेवी मैडम बहुत अच्छी लगती थी, उनके गाने भी हमको बहुत पसंद थे। अब वो दुनिया में नहीं है तो हमको बहुत अलग सा महसूस हो रहा है।
अभी उम्र का हमको बहुत दुख हो रहा है। मैं कब से एक दो घंटे से उनका इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमको उनका बॉडी का दर्शन नहीं हुआ अभी तक।
और इस वक्त सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं सूर्यांशी पांडे। सूर्यांशी, हम आपसे जानना चाहेंगे, मुंबई में आप लगातार नजर रखे रहीं अनिल कपूर और श्रीदेवी के घरों पर, क्या वहां हलचल है इस वक्त फिलहाल?
अगर हम बात करें हलचल की तो अभी 11 बजे के बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर उनका शव जो है वो लाया जाएगा और क्लियरेंस जो है वो मिल चुकी है दुबई के वहां से हेल्थ मिनिस्ट्री से। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर खास बात यह है कि जयाप्रदा जी वो मौजूद हैं और वो अपने कुछ विचार रखना चाहेंगी कि श्रीदेवी के साथ जो उनका कॉम्पिटिशन है जिसके बारे में सबसे ज्यादा जिक्र होता था 1980 के दशक में, उसके बारे में वो कुछ कहना चाहेंगी और श्रीदेवी जी को याद करना चाहेंगी।
जी स्वागत है जया जी, हम सीधे चाहेंगे कि आप श्रोताओं को बताएं और उस पुराने दौर को याद करें।
जी मैं क्या बोलूं, कुछ शब्द नहीं मिल रहा है, बहुत ही सदमे में है हम सब। मैं ही नहीं, सारी इंडस्ट्री भी सदमे में है, ये कैसे हो गया। आज श्रीदेवी जी हमारे बीच में नहीं है, ये सोच के बहुत डर लग रहा है। मैं उनके साथ कई सालों से फिल्मों में, कई फिल्मों में हम काम किए और साथ रहे, और कई साल हम लोगों ने ऐसे फिल्मों में जो काम किए हैं वो सब हमारे लिए हमेशा याद रहेगा।
जी जया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, तमाम लोगों ने आपकी जोड़ी को देखा, केमिस्ट्री को देखा, एक कंपटीशन भी आपके बार आप दोनों के बीच कहा जाता था, लेकिन वो दौर बीत चुका है, आपके अभिनय से सभी लोग वाकिफ हैं। श्रीदेवी जी की ऐसी कोई निजी बात जो आपको अब तक याद हो, उनके व्यवहार से जुड़ी, परिवार से जुड़ी, जो आप साझा करना चाहें।
ऐसा है कि हम दोनों को हमेशा एक एक इमेज क्रिएट कर दिया कि हम दोनों में, हमारे बीच में झगड़ा है, लेकिन अभी हमेशा हम दोनों में ऐसे कोई इमेज नहीं है, ना हमारे बीच में हार्डशिप था, ना हमने एक दूसरे को कुछ कहा हो।
जी।
एक पॉलिटिकली एक 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 प्रोफेशनल मीडिया हाइप होता था कि एक दूसरे को फैंस को दिखाने के लिए, या यू नो प्रोफेशनली ये लोग इतने जो अच्छे स्टार्स हैं, तो उन दोनों के बीच कुछ ऐसे जो चीज मीडिया ने क्रिएट किया तो इसको हाइप कर दिया।
जी मैं जया जी, लेकिन जया जी मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जानना चाहूंगा संक्षेप में, कि अगर भारतीय सिनेमा का इतिहास की बात होगी तो वहां आप श्रीदेवी को आपकी नजर में क्या जगह मिलती है?
मेरी नजर में मैं ये बताऊं कि शी इज परफेक्ट वुमन, आई कैन से। शायद मैं अगर उनके साथ लंबे सफर मैं नहीं कर पाई, लेकिन लेकिन जितना मैंने किया उसमें मैं उनके गुणों को अगर मैं गिनूं तो शी इज अ परफेक्ट डांसर, शी इज अ परफेक्ट वुमन, शी इज अ परफेक्ट मदर। सो ऑल इन पुट टुगेदर इन वन बास्केट। सो एक औरत के लिए इससे बढ़कर कोई खूबी की जरूरत नहीं है। एंड अक्सर शी इज कॉम्पिटिटिव फॉर हर ओन हर सेल्फ, कोई और बाहर वाले आने की जरूरत नहीं है। हर रोज उनके अपनी तस्वीर देखेगी तो वो ऐसे फील करती है कि नहीं, इससे ज्यादा मैं और सुंदर दिखना चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया जया जी, आप हमारे साथ जुड़ी, श्रोताओं ने आपकी बात सुनी, और सूर्यांशी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने सीरिया के पूर्वी गूटा में तुरंत संघर्ष विराम लागू करने की अपील की है। विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी गूटा में सीरिया सरकार समर्थित सेनाओं के ताजा हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं रूस ने कहा है कि जब तक सभी पक्ष संघर्ष विराम लागू करने के तरीके पर सहमत नहीं होंगे तब तक इसकी शुरुआत नहीं होगी। पूरी रिपोर्ट सुनिए बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर से।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने सीरिया के पूर्वी गूटा के हालात पर चिंता जताई है और वहां तुरंत संघर्ष विराम लागू करने की मांग की है। पूर्वी गूटा में सीरिया सरकार समर्थित सेनाओं की ताजा कार्रवाई में कम से कम 10 लोगों की मौत की रिपोर्ट है। गुटरेश ने कहा कि सीरिया और पूर्वी गूटा में लोग संघर्ष विराम लागू करने का इंतजार कर रहे हैं, इसमें अब और देर नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव तभी अर्थपूर्ण हैं जबकि उन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रस्ताव को तुरंत लागू किया जाए। मानवीय मदद मुहैया करवाने और गंभीर रूप से बीमार और घायल लोगों के बाहर आने तक ये जारी रहे। पूर्वी गूटा के लोग इंतजार नहीं कर सकते, फिलहाल इस नारकीय स्थिति पर रोक लगाना जरूरी है। ये थे एंटोनियो गुटरेश के शब्द। रिपोर्टों के मुताबिक सीरिया के पूर्वी गूटा में बीते 8 दिन से जारी हमले में कम से कम 541 लोगों की मौत हो चुकी है। सीरिया सरकार के सहयोगी रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि संघर्ष विराम में चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम लागू करने के तरीके पर सभी पक्षों की सहमति जरूरी होगी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मामलों के प्रमुख जैद राद अल हुसैन ने चीन, रूस और अमरीका पर सीरिया संघर्ष को लंबा खींचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन देशों पर दबाव बनाना जरूरी है।
The responsibility for the continuation of so much pain.
दर्द के इस दौर के जारी रहने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों पर है। जब तक ये किसी संयुक्त कार्रवाई को रोकने के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल करेंगे तो इन्हें पीड़ितों को जवाब देना चाहिए। फ्रांस ने सराहनीय कदम उठाया है। ब्रिटेन भी 115 देशों के समर्थन वाली पहलकदमी में शरीक है। अब चीन, रूस और अमरीका को भी इसमें शरीक होना चाहिए। ये थे जैद राद अल हुसैन के शब्द। पूर्वी गूटा सीरिया की राजधानी दमिश्क के करीब है और ये विद्रोहियों के कब्जे वाला आखिरी अहम क्षेत्र है। रूस और ईरान की मदद से सीरिया ने साल 2013 से इसकी घेरेबंदी की हुई है।
रिपोर्ट सुना रहे थे आदर्श राठौर। और इस बीच खबर आ रही है कि रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि मानवीय मदद के लिए कल से कॉरिडोर खोला जाएगा। और अब बात चीन और भूटान के रिश्तों की। हाल में ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं जिनमें जानकारी दी गई है कि चीन भूटान के साथ रिश्ते बढ़ाने की कोशिश में है। भारत सरकार का कहना है कि उनकी इस पर नजर है। भूटान अब तक भारत के करीब रहा है, क्या आगे इन रिश्तों के समीकरण बदलेंगे? जानते हैं बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा की इस रिपोर्ट में।
हिमालय की पहाड़ियों में बसा भूटान तीन ओर से भारत से लगा है और उसके ऊपर चीन है। एशिया की दो शक्तियों भारत और चीन के बीच में बसा करीब 8 लाख की आबादी वाला यह राजशाही देश भारत के अधिक करीब रहा है। लेकिन हाल के दिनों में भूटान और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ने की खबरें आई हैं। लेकिन भूटान में भारत के राजदूत रहे और अब जनता दल यूनाइटेड से जुड़े पवन वर्मा को ऐसा नहीं लगता।
चीन के लिए भूटान भी उतना ही शायद जरूरी है जितना हमारे लिए भूटान के साथ अच्छे संबंध रखना। पर अभी तक भूटान ने चीन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक कायम नहीं किए, तो इन सब बातों में मुझे नहीं लगता कि कोई खास वजन है।
भारत के लिए भूटान से संबंध बेहतर बनाए रखना क्यों जरूरी है, इसके जवाब में वर्मा कहते हैं,
जहाँ भूटान है वहाँ हमारे लिए और हमारे सुरक्षा के लिए और स्ट्रेटेजिकली उसके लिए ये भूटान के साथ और ये हमारे लिए और कारण से भी अहमियत रखता है।
वहीं कई देशों में भारत के राजनयिक रहे और भारतीय कूटनीति की गहरी समझ रखने वाले लखनलाल मेहरोत्रा कहते हैं,
बीच बीच में हमारी जानिश में भूटान चीन से बात करता रहा है और उसी बातचीत के आधार पर उनका डोकलाम के ऊपर उनसे ये समझौता हुआ था कि कोई भी दोनों में से कोई भी देश डोकलाम में जो वास्तु स्थिति है उसको बदलने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा जब तक कि उसका निर्णय नहीं हो जाए। तो ये भी उनसे आपस में बात करके ही ये नतीजा निकला था। कभी हमने उसके प्रति आपत्ति नहीं दिखाई है। कभी कभी ऐसा होता है कि भूटान उन लोगों से बातचीत शुरू करता है और अफवाहें शुरू हो जाती हैं कि भूटान जो है चीन की तरफ जा रहा है।
मेहरोत्रा का ये भी मानना है कि भूटान का चीन से कोई संबंध ही नहीं होगा, ये नामुमकिन है। भूटान चीन से रिश्ते बनाने में भी हमेशा भारत को साथ लेकर चला है और भूटान के इस रुख में परिवर्तन नहीं दिखता है। लेकिन अगर भारत की जानकारी के बिना भूटान चीन के करीब जा रहा है तो ये भारत के लिए चिंता की बात है।
लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि भारत से छिपा करके चीन से बातचीत कर रहे हैं और उसका भारत को कोई अंदाज नहीं है तो उसके ऊपर फिर हमें सतर्क होना पड़ेगा और फिर हमें ये सोचना जरूर पड़ेगा कि आगे क्या करना है।
छोटा सा मुल्क भूटान एशिया की दो शक्तियों भारत और चीन के लिए बेहद अहम हो गया है और अब देखना ये है कि क्या भूटान अपनी भारत के साथ रहने की दशकों से चली आ रही नीति को बदल देगा। दिलनवाज पाशा, बीबीसी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक खास सीरीज। इस खास सीरीज में होगी उन महिलाओं की कहानियां जिन्होंने दुनिया के कहे मुताबिक या दूसरों की शर्तों पर जीने से इनकार कर दिया। ये कहानियां भारत के अलग अलग कोने में मौजूद महिलाओं की असल कहानियां हैं। #herchoice के तहत उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभव बीबीसी के साथ साझा किए हैं। पहली कड़ी में उत्तर भारत की एक महिला की कहानी पेश कर रही हैं बीबीसी संवाददाता प्रज्ञा मानव।
पहली बार फेसबुक पर उसका मैसेज आया तो चौंक गई थी, दिल धक से रह गया, लगा कोई चोरी कर रही हूं। खुद पर हंसी भी आई, सोचा कितनी बेवकूफ हूं, घर में अकेली हूं, किसका डर है। उसका नाम आकाश था, लिखा था, हाय मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मुंह पर मुस्कुराहट आ गई, फिर झेप भी हुई, शादीशुदा हूँ। शादी का ख्याल आते ही एक टीस सी उठी मन में, ये इनकी बेरुखी ही है कि एक अनजान आदमी का हाय भी मेरे दिल में गुदगुदी कर सकता है। मेरे पति को न रोमांस से मतलब है न भावनाओं से, एकदम मशीन की तरह है इनकी जिंदगी। सुबह उठो, दफ्तर चले जाओ, 10 बजे आओ, खाना खाओ, सो जाओ। मुझे पता है कि वो मसरूफ हैं, लेकिन बीवी को प्यार से निहारने या गले लगाकर दो शब्द कहने में कितना टाइम लगता है। एक बार मैंने कहा भी तो बोले मैं नहीं करता ये चूंच ले। यही सब सोच रही थी कि आकाश ने दोबारा पिंग किया, उसे मेरी फोटो देखनी थी। मैंने टाल दिया, सब कहते थे कि फोटो चुरा कर पॉर्न साइट्स पे डाल देते हैं। हम रोज बात करते, बहुत मजा आता था। एक समय तो ऐसा आया कि मुझे सुबह से एक्साइटमेंट होने लगती कि काम निपटा लूं तो बात करेंगे, लेकिन अब उसने मुझे देखने की रट पकड़ ली थी। कुछ और समझ नहीं आया तो मैंने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद चिढ़कर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसका जाना मेरी जिंदगी को और खाली बना गया। उसके साथ दिन कितनी जल्दी गुजर जाता था, बेवजह मुस्कुराती रहती थी। एक गैप था जो उसने भर दिया, ऐसा गैप जो मेरे पति को नजर ही नहीं आता। फिर कुछ दिन बाद एक लड़के का प्रोफाइल दिखा, शक्ल सूरत अच्छी थी तो मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। बोला, आप तो शादीशुदा हो, आपने मुझे रिक्वेस्ट क्यों भेजी? मैंने कहा, क्यों भाई, शादीशुदा लड़कियां क्या दोस्त नहीं बनाती? हम आज तक संपर्क में हैं। इसी तरह एक दिन एक और लड़के का प्रोफाइल दिखा, मैंने ऐड रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट भी कर ली। इसी बीच मेरी बेटी आ गई। आजकल सारा समय मेरी बेटी ले लेती है। कभी कभी मन करता है कि किसी से बात करूं, लेकिन फोन उठाते ही वो आ जाती है अपने वीडियो देखने। कभी कभी तो फ्रस्ट्रेशन भी होता है, लगता है ये चल क्या रहा है, बस माँ और पत्नी बनकर रह गई हूँ। अब मैंने तय किया है कि मैं अपनी बेटी के साथ ये नहीं होने दूंगी, उसे इस लायक बनाऊंगी कि वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सके।
खास सीरीज की आज की कहानी को आवाज दी थी प्रज्ञा मानव ने, और अब आपकी राय।
आपकी राय, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी, और मेरे साथ स्टूडियो में है,
नमस्कार, मैं हूं सरोज सिंह। सबसे पहला मैं पढ़ूंगी आरा बिहार से, आशुतोष कुमार पांडे ने लिखा है, पिछले कई दिनों से रेडियो पर खबर नहीं सुनाई दे रही है, बीबीसी की वेबसाइट पर बहुत कम खबरें पढ़ने को उन्हें मिल रही हैं जो उनके लायक होती है, और किसी में फॉलो अप नहीं दिखता। उन्होंने मिसाल के तौर पर समीर आत्मज मिश्र की एक खबर लिखी है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में योगी आदित्यनाथ के उस मसले पर सुनवाई की बात थी, उसका फॉलो अप उन्हें नहीं मिल पाया, ये शिकायत है।
आशुतोष जी, पत्र लिखने के लिए, ईमेल भेजने के लिए आपका शुक्रिया। हमें अफसोस है कि आप हमारे रेडियो प्रसारण नहीं सुन पा रहे हैं। जहां तक योगी आदित्यनाथ की स्टोरी पर फॉलो अप का सवाल है, जब फैसला, अदालत का फैसला उनके पक्ष में आया, तब भी हमने वो रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की थी, और मेरा ख्याल है कि वो किसी वजह से आप नहीं देख पाए। लेकिन जब भी हम कोई बड़ी खबर करते हैं या कोई ऐसी खबर होती है जिसको हम रिपोर्ट कर रहे हो, तो हमारी कोशिश होती है कि उसमें आगे अगर कोई अपडेट है तो वो हम लोगों को जरूर बताते हैं।
अगला जो ईमेल है वो गणेश प्रसाद का है, और ये लिखते हैं कि बॉलीवुड की खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्री के निधन पर, जब जिया की तानाशाही का दौर था और श्रीदेवी थी सहारा, इस शीर्षक पर वसतुल्ला खान साहब की जो ब्लॉग था वो उन्हें बेहद पसंद आया, और कमाल की बात सुबह सुबह ही छपा है और उन्हें पता भी चल गया।
जी बिल्कुल, ये सब चीजें हम आप तक पहुँचा पाते हैं क्योंकि हम बीबीसी हैं और हमारा नेटवर्क भारत से बाहर दुनिया के और भी कई देशों में, और हम कोशिश करते हैं कि जब भी ऐसी कोई घटना हो तो हम आपको उन जगहों से लोगों की राय और खबरें दिखा सकें जहां से आमतौर पर आपको भारतीय चैनलों में या भारतीय मीडिया में देखने को नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लगा।
अगला जो ईमेल है वो अमर विर्क का है, ब्रॉम्पटन कैनेडा से उन्होंने लिखा है, इस बार जो इंडिया बोल कार्यक्रम में कैनेडा की छवि आतंकवाद के समर्थक के रूप में दिखाई गई उससे वो बेहद निराश है।
देखिए, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं थी कि कनाडा की छवि आतंकवाद के समर्थक के रूप में दिखाई जाए, लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक बहुत ही मजबूत लॉबी है कनाडा में सिखों के बीच में, जिसको वहाँ रहने वाले सिख और बाकी लोग जानते हैं, जिनको खालिस्तान समर्थक कहा और समझा जाता है, ये एक सच है। और जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई है भारत में जस्टिन ट्रूडो की यात्रा का, उसमें ये आवश्यक था कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन हमारी मंशा या हमारा उद्देश्य कनाडा की छवि को बनाना या बिगाड़ना नहीं है।
अगला जो ईमेल है वो मुशफिक हसन साहब लिखते हैं, और ये लिखते हैं सऊदी अरब से। इनका कहना है, मैं पिछले 10 वर्षों से बीबीसी से समाचार सुनता रहा हूँ। वो कहते हैं कि अब पिछले दिनों मेरा ट्रांसफर सऊदी अरब हुआ है, वहाँ एक कंपनी में वो अकाउंटेंट हैं और वहाँ ऑफिस वाईफाई पर वो बीबीसी सुन नहीं पा रहे हैं। ये चाहते हैं अपनी समस्या का समाधान हमसे।
नॉर्मल 3G और 4G पर हमारे ऐप पर और हमारी वेबसाइट पर आपको कार्यक्रम सुनाई देना चाहिए। अगर वाईफाई की दिक्कत है तो आप उस वाईफाई जोन को या वाईफाई को ऑफ करके और नॉर्मल उस पे मोबाइल इंटरनेट पर सुन सकते हैं।
अगला जो ईमेल है वो आशीष पांडे लिख रहे हैं लखनऊ से, और इनका कहना है कि मोदी सरकार आने के बाद बीबीसी का मुख्य उद्देश्य जैसे हर बात पर मोदी या भाजपा सरकारों की आलोचना करना हो गया है। मैं एक पुराना श्रोता हूं, अतः तब और आज मैं अंतर स्पष्ट रूप से समझ पा रहा हूं। ये उनकी शिकायत है।
ऐसा कई लोगों की शिकायत है और इसकी शायद वजह ये है कि भारत में पिछले 4 सालों में बहुत सारी चीजें बदली हैं। पहले इस तरह की जो सरकार की कामकाज की शैली है, सरकार ने जो फैसले लिए हैं, उन सभी मुद्दों पर सवाल उठाना, उन पर चर्चा करना, ये हमेशा से बीबीसी का काम रहा है। अलग से ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार के लिए काम नहीं कर रहे हैं। श्रोताओं की तरफ से सरकार से सवाल पूछना एक ज़रूरी काम है। इसमें किसी भी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि सवाल उसी से पूछे जाएंगे जो राज कर रहा हो।
आपकी राय में रेहान फजल साहब के बारे में ना कहें तो शायद ये अधूरा होगा। बहुत सारी चिट्ठियाँ हमारे पास आई हैं जिसमें सुभाष चंद्र बोस पर जो उन्होंने विवेचना प्रसारित की थी उसकी बहुत सारी तारीफ है।
आपकी तारीफ हम रेहान फजल तक पहुंचा देंगे, और आपको चलते चलते यहीं ये बता दें कि रेहान फजल इस वक्त आपके लिए एक अगली विवेचना की तैयारी में है। अगली विवेचना जो आप सुनेंगे, जो रेहान फजल बना रहे हैं, वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड लॉर्ड हाजी मस्तान के ऊपर है, तो आप इंतजार करिएगा और सुनिएगा। बस चलते चलते मैं आपको पता बता दूं, अगर आप हमें डाक से पत्र भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और खेल जगत की हलचल की जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सुमिरन प्रीत कौर। जी सुमिरन
जी, तो सबसे पहला अपडेट यह है कि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मॉर्नी मॉकल ने फैसला किया है कि वे अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने वाली अफगानिस्तान टीम के गेंदबाज राशिद खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC की T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। और जाने से पहले बात उस त्रिकोणीय श्रृंखला की जिसमें भारत भाग लेगा, इसके कप्तान होंगे रोहित शर्मा। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन विराट कोहली को और महेंद्र सिंह धोनी को रेस्ट दिया गया है।
जी बहुत शुक्रिया सुमरन, और चलते चलते सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई शोगु ने कहा है कि पूर्वी घुटा से नागरिकों के निकालने के लिए मानवीय कॉरिडोर खोला जाएगा जो प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए खुला रहेगा। दुबई पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत होटल के कमरे में बाथटब में डूबने से हुई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि श्रीदेवी बेहोश होने के बाद डूब गई थी। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त जैद अल हुसैन ने यूरोप के कुछ नेताओं की विदेशी मूल के लोगों के प्रति नफरत फैलाने और नस्लवाद को बढ़ावा देने के लिए आलोचना की है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार, फेसबुक प्रसारण में मदद की भूमिका राय ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टी मीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।